हमने कठोपनिषद की चर्चा में नचिकेता का तीसरा वर विचार कर रहे थे। मंत्र है येयम् प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्येके नास्तीति चैके एतद्विद्या मनुषेष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः। मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद हम होते हैं। मेरा तीसरा वर आपसे यही मांगना है, आप मुझे वो ज्ञान बताओ कि मौत के बाद क्या है, आत्मा के बारे में बताओ कि वो सचमुच है या नहीं है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले दो चार शंकाएं दूर कर देनी जरूरी है। नचिकेता 8 या 9 साल का बच्चा है, मतलब हमारे या आपके बच्चे होते तो तीसरी थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ते या फोर्थ में, सेकेंड या थर्ड में पढ़ते। इतने बड़े बड़े सवाल करता है, लोगों को लगता होगा कि ये काल्पनिक है, बनावटी है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं बड़े हमेशा बड़े सवाल पूछे। वैसे ज्यादातर देखा गया बड़े तो हमेशा छोटे छोटे सवाल ज्यादा पूछते हैं, छोटे ही बड़ों को हमेशा तंग करते हैं सवाल पूछ के। बचपन में जितने बच्चे सवाल पूछते हैं जिनको हमने इग्नोर किया, तिरस्कार किया, जवाब नहीं दिया, उनमें ज्यादातर सवाल वो थे जो हमें चुभने वाले थे, काटने वाले थे, तिलमिलाने वाले थे और हम उनको चुप कराते थे। बड़े होने के बाद हम समझौतावादी बन जाते हैं, सवाल पूछने से डरते हैं, जवाब देने से डरते हैं, काम चलाओ सवाल पूछते हैं, सामने वाले को खुश करने के लिए सवाल पूछते हैं। सवाल इसीलिए नहीं पूछते कि जानना है, सवाल इसीलिए पूछते हैं कि सामने वाले को खुश करना है या सामने वाले को तंग करना है। दुनिया में बच्चा और बूढ़े में सामाजिक तौर पर तो जरूर फर्क है, पर सृष्टि को अगर आप देखें बच्चे बूढ़ों में कम अंतर होता है। विज्ञान में शरीर का उम्र मापा जाता है कितने साल का, अब नए फिजिक्स में मन की भी उम्र नापे जाने लगा है कि कितने साल का मन हो सकता है। शरीर का उम्र और मन का उम्र दो अलग अलग चीजें हैं। आप हो सकते हैं 50 साल के व्यक्ति हैं, 50 साल मतलब आपका शरीर 50 साल का हो गया, पर आपका मन 7 साल का हो सकता है। बड़े सारे बुजुर्ग मिलेंगे जो अभी भी बच्चों जैसा हरकत करते हैं, मन अभी तक परिपक्व नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हो पाया। बड़े सारे बच्चे मिलेंगे 8-10 साल के बच्चे पर 50 साल के मन है, कुछ ज्यादा ही ज्यादा बुढ़े हैं, छोटे मन में, छोटे शरीर में बड़ा मन है। पर हमारी संस्कृति ये बात नहीं कहती है, वो एक दूसरी बात कहती है कि हर व्यक्ति का 3 उम्र होता है। आप शरीर से 50 साल के हो सकते हैं, आपका मन 50 लाख साल, 50 हजार साल, 50 करोड़ साल का हो सकता है। पर एक तीसरा हमारा उम्र है, आत्मा की उम्र है, और आत्मा की उम्र में हम सब बराबर एज वाले हैं। पोते का, बेटे का और बाप का, दादा का, सबका उम्र समान है। क्योंकि सबकी आत्माएं समान स्थिति में समान उम्र की हैं, अजर है, अनंत है, नित्य है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। शरीर बदलता रहता है, कोई अभी बच्चा है, कोई बुढ़ा है, कोई जवान है। आत्मा के दृष्टि से सो बाप बेटे दोनों बराबर एज के होते हैं। शरीर के दृष्टि से जरूर बाप बड़ा है, बेटा छोटा है। मन के दृष्टि से कोई गारंटी नहीं कि बाप बड़ा है, बच्चा छोटा है। बाप छोटा हो सकता है, बच्चा बड़ा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके जन्म जन्मांतरों से किस तरह का संस्कार उसके मन में है और वो कैसे व्यवहार करता है। शंकराचार्य 32 साल की उम्र में मर गए थे, देहांत हो गया था। 32 साल की उम्र में तो हमें ढंग से ज्ञान भी नहीं होता, बहुत सारे बच्चे तो शादी भी नहीं करते, कमाने लायक भी नहीं हो पाते हैं। शंकराचार्य मर चुके थे। 18 साल के उम्र तक उन्होंने जितने ग्रंथ लिखना था वो सब लिख चुके थे, और ऐसे कठिन ग्रंथ हमारे आपके जैसे लोगों को 300 साल लग जाता है उसको समझने में। स्वामी दयानंद जैसा बड़े मीन मेख निकलने वाले, बारीकी से हर चीज को परखने वाले व्यक्ति, जो बड़े सोच समझ के तारीफ या निंदा करते हैं, उनको भी कहना पड़ा शंकराचार्य जैसा ज्ञानी बड़े दुर्लभ होते हैं। विचार भेद जरूर था, दोनों में सिद्धांत के जमीन आसमान अंतर था, पर वो शंकर के विद्वत्ता के बड़े कायल थे। और वो विद्वत्ता कब, 18 साल की उम्र में वो सारे ग्रंथ लिख चुके थे जिसको हमें 300 साल लग जाएगा समझने में। 18 साल का मतलब हमारे और आपके बच्चे 10वीं 11वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं में या अभी अभी कॉलेज जा रहे होंगे। 8 साल की उम्र में वो सन्यास ले चुके थे। 8 साल का बच्चा अभी जो बदमाशी कर रहा है, शैतानी कर रहा है, यहां खेलता है। शंकराचार्य सन्यास ले चुके थे। सन्यासी लेने के लिए क्या चाहिए कि दुनिया आपको बेकार लगता है, ये दुनिया किसी काम का नहीं है, ये भावना जब आता है तभी आदमी दुनिया को छोड़ देता है, सन्यास लेता है। आप तभी तो कोई चीज छोड़ते हैं जब आपको लगे अब ये यूज़लेस है। सन्यासी का अर्थ यही होता है जिसके लिए अब दुनिया मायने नहीं रखता। वो जिंदा है सिर्फ क्योंकि शरीर जब तक है, पर अब दुनिया में उसका कोई अटैचमेंट नहीं। शंकर ने दुनिया देखी कब थी, 8 साल की उम्र में क्या दुनिया देखी, ना शादी की, ना बच्चे पैदा किया, ना कोई नौकरी की, ना बिजनेस किया, ना किसी ने धोखा दिया, ना किसी ने कुछ तो नहीं हुआ था। फिर कहां से दुनिया में इतनी नफरत आ गया कि सन्यास ले लिया। मतलब कुछ घटा जो इस उम्र इस जन्म में नहीं दिख रहा है, वो भोगा जरूर है, उस दुनिया से उनको नफरत जरूर हुआ है, पर ये 8 साल की उम्र में नहीं है। इसका मतलब शंकर 8 साल की उम्र में सन्यास नहीं लिया, उन्होंने जिंदगी को और बहुत कुछ देखा है। वो 8 साल तो इस शरीर का उम्र है, इस शरीर से पहले भी उन्होंने दुनिया देखी होगी, जिसके कारण नफरत हुआ, जिसके कारण इतना ज्ञान हुआ। दुनिया में हर देश में आपको हजारों बच्चे मिलेंगे इस तरह के बच्चे, जो बड़े बड़े बुजुर्गों से ज्यादा समझदार होते हैं। अपने भारत में, बिहार में एक लड़का है, आजकल वो 20-22 साल का हो गया है, मैं 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब वो 8 साल की उम्र का था, उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में केस करके, क्योंकि उसको किसी भी बोर्ड में एग्जाम देने नहीं दिया, वो 8 साल की उम्र में उसने बीएससी का एग्जाम देने के लिए अप्लाई किया सीधा। वो 9 साल की उम्र में एमएससी पास किया, 11 साल की उम्र में साइंस में पीएचडी किया, 13 साल की उम्र में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में साइंटिस्ट के रूप में नौकरी किया। आज वो 23 साल का है, दुनिया भर में जितने कॉन्फ्रेंस होते हैं, साइंस के कॉन्फ्रेंस वो जाता है, पर अपने पापा के साथ जाता था। वही नटखट करता था जिस जैसे उसकी उम्र के बाकी बच्चे नट बदमाशी करते हैं, जैसे उसकी उम्र के बच्चे आइसक्रीम चॉकलेट के लिए बेलून के लिए खिलौने के लिए परेशान होते हैं, पर जब वो सेमिनार में बोलता है, जब क्लासरूम में आईआईटी में पढ़ाता है, तो वो किसी प्रोफेसर से कम नहीं होता। कहां से आया ये 8 साल की उम्र में ये ज्ञान? इस उम्र में तो उसने पढ़ा नहीं है, इस जीवन में तो पढ़ा नहीं है, और अभी वो 22-23 साल का है। ये मैं अखबार की कुछ सूचना देता हूं, हो सकता है मेरे से ज्यादा जानकारियां आपके पास हो इस तरह के। थाईलैंड में बैंकॉक में एक बच्चा, वो इंडियन है, नागपुर के मराठी है, 3 साल का बच्चा, वो अपने बाप के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर देता था। अभी इसी हफ्ते का या पिछले हफ्ते के जो आपके इंडियन मैगजीन आता है उसमें एक न्यूज था, ह्यूस्टन के या कहीं का कोई इंडियन बच्चा है, वो अभी 13 साल की उम्र में ये किसी यूनिवर्सिटी में कि साइंस में एमएससी या कुछ करने के लिए अप्लाई कर रखा है डायरेक्ट पेपर देने के लिए। उसने सीधे 7 साल की उम्र में 8वीं की परीक्षा के इम्तिहान दिया अमेरिका में, इंडियन बच्चा है। कहां से आया ये ज्ञान? इस उम्र इस जीवन में तो पढ़ा नहीं। मतलब जिसको हम जीवन कहते हैं, ये जो दिखता है इसे पीछे भी कोई जीवन है जो चलता आ रहा है। अनेक जन्म जन्मांतर बीत चुके हैं, शरीर बीत चुका है। मेरा शरीर 50, 60, 70, 80 साल का हो सकता है, पर मेरा मन कितने पुराना हो सकता है? इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर कोई गंभीर सवाल पूछे तो ये काल्पनिक होगा, ये इमेजिनरी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, लोगों में बचपन अभी तक खत्म नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों में बुढ़ापा आ जाती है। बच्चे गुड्डे गुड़िया की खेल खेलते हैं, शादी कराते हैं गुड्डा गुड्डी की, हम कहते हैं बच्चे हैं, बुड्ढे कहां से कम है? राम सीता की शादी करवाते हैं प्रवचनों में, कृष्ण रुक्मिणी की शादी कराते हैं, कौन नाचता है, कौन बारात बन के जाता है? सब बुड्ढे जाते हैं। ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। पर समस्या क्या है? क्योंकि वो बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बचपन, जब ये बचपना बड़ा खराब लगेगा कोई कहे कि बच्चों जैसा खेलते हो, उनका दिमाग क्योंकि पक चुका है, इसीलिए उनके पास लॉजिक बहुत है, वो लॉजिक देते, ये धर्म है, ये वो है, ये कर्म है। बच्चा बेचारा भाषा नहीं जानता, लॉजिक नहीं जानता, वो कहता है मेरा गुड्डा गुड़िया का खेल हो सकता है पता नहीं, पर ये भी तो वही कुछ कर रहे हैं, असली नहीं सब नकली है। वो तो चलो राम कृष्ण की शादियां नकली है क्योंकि मूर्ति बना के करते हैं, हमारी जो असली शादियां होती है उसमें कितना नकलीपन है? वो गुड्डे गुड्डी खेल से कहां अधिक है? हजारों लाखों डॉलर करके जो नौटंकियां करते हैं और 10 12 20 25 साल के बाद कितने बदल डालते हैं, कोई कोई तो 4-4 शादियां करते हैं, चर्च में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, 3 जितने जगह शादी किया उतने साल भी नहीं जाता है। पर क्या है कि हम पढ़े लिखे हैं, उम्र ज्यादा है, हमारे पास लॉजिक है, हम हर चीज को जस्टिफाई करना जानते हैं, हम वो बच्चों जैसे खेल को भी जस्टिफाई कर देते हैं। बच्चा नहीं कर पाता है इसलिए थप्पड़ खाता है, डांट खाता है, बड़े के पास हर चीज है इसीलिए वो उसका हर बचपन बड़ा जैसा होता है। पर हे, हम बचपन से ज्यादा ऊपर नहीं उठते। 3री चीज आपसे कहूं, हम बच्चों से कम नहीं होते हैं। बच्चे आपस में लड़ते हैं किस बात के लिए? मैं बड़ा हूं। 2 भाई हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, खेलने में जो कैप्टन कौन बनेगा, घर में मां बाप का सबसे लाला कौन, आपस में लड़ते रहते हैं छोटे छोटे चीजें के लिए, मैं बड़ा हूं। बड़े भी लड़ते हैं, बड़े बड़े चीजों के लिए नहीं, छोटे छोटे चीजों के लिए। जब मैं कहता हूं मेरा देश महान है, ऐसा नहीं कि अमेरिका का आदमी कहता है मेरा देश महान है, भारत का आदमी भी कहता है, ऐसा नहीं कि भारत का आदमी कहता है, इथियोपिया सोमालिया का आदमी भी कहता है मेरा देश महान है। क्यों महान है भाई तेरा देश? क्योंकि मेरा देश है, और कोई लॉजिक नहीं। बच्चा सिर्फ ये कहता है कि मैं बड़ा हूं, बुजुर्ग आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा हूं, उसको ये प्रॉब्लम है कि लोग कहीं मुझे एरोगेंट ना समझ ले। वो अपनी चीजों में अपना बड़प्पन ढूंढता है, मेरा देश बड़ा है। अफगानिस्तान का आदमी भी कहता है मेरा देश बड़ा है, महान है। किस बात की महान है? इसीलिए कि वो मेरा देश है। मेरा धर्म सबसे अच्छा है, दुनिया में जितने खून खराबा हुआ क्यों हुआ? बच्चे आपस में लड़ते हैं, मैं बड़ा कि तुम बड़ा, बड़े भी लड़ते हैं, पर दोनों लड़ते हैं कमन चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, पर बड़े छोटी चीजों के लिए बड़े बड़े कर्तव्य कर जाते हैं। छोटों की ताकत नहीं होती है तो छोटे छोटे कर्तव्य करते हैं। वो धर्म जो अपने आप में इमेजिनरी है, उसके लिए दुनिया भर में करोड़ों लोग मारे गए हैं, सिर्फ इसीलिए कि मेरा धर्म बड़ा है तेरा धर्म छोटा है, मेरा देश बड़ा है तेरा देश छोटा है। इसी लड़ाई में ये बच्चों जैसी बुद्धि है, पर हमारे पास भाषा है, ताकत है, हम इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, पर हम बच्चों से बड़ा नहीं होते। तो इसीलिए नचिकेता का ये 8 साल का उम्र कभी सवाल नहीं है, होना चाहिए, आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि छोटा बच्चा ऐसे सवाल कैसे पूछेगा। दुनिया में अनेक बुजुर्ग हैं जिनके बचपन अभी भी है, जो कभी परिपक्व नहीं हो पाए, और दुनिया में ऐसे अनेक बच्चे हैं जो बड़े जल्दी बुजुर्ग हो जाते हैं। उनमें से नचिकेता एक था, जो छोटे शरीर में बड़ा मन लेकर के था, जन्म जन्मांतरों के संस्कार था, और वो यमराज से पूछता है बताओ मृत्यु के बाद क्या होता है। इसकी चर्चा हमने पिछली बार थोड़ी सी की थी, ये बड़ा केंद्रीय प्रश्न है जीवन का, जीवन कैसा हो ये इसी से डिसाइड होता है, निर्णित होता है कि आत्मा है या नहीं है। अगर ये साबित हो कि आत्मा नहीं है, फिर ये संसार जिस रूप में चल रहा है उस रूप में नहीं चल सकता, फिर धर्म अधर्म पाप पुण्य अच्छा बुरा का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब पापी और पुण्यात्मा दोनों को मरना ही है, शरीर के मरने के बाद कुछ बचता नहीं है, साधु और चोर दोनों को मरना ही है, मरने के बाद कुछ बचता नहीं है, फिर किसी लिए साधुपन किसी लिए अच्छापन, क्या फर्क पड़ता है? तो जीवन में जो जो मूल्य बोध है, वो मूल्य बोध का निर्णय हमारे आत्मा की सत्ता पर निर्धारित होता है, और ये करोड़ों सालों से सवाल है और आज तक सवाल है, पूर्व में पश्चिम में हर जगह। नचिकेता ने सवाल पूछा, यमराज को लगा कहीं सवाल उसने ऐसे ही पूछ लिया होगा, जैसे बहुत सारे लोग इसीलिए सवाल पूछ देते हैं अपनी इंटेलिजेंसी दिखाने के लिए कि भाई मैं कितना समझदार आदमी हूं। उनको सवाल के उत्तर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सवाल पूछ के आपस में बात करने लग जाएंगे, आप जवाब देते रहो, और जो पूछा वही नहीं सुनता ज्यादातर। कभी कभी सवाल पूछते हैं सामने वाले को परीक्षा करने के लिए, तो हम बहुत कारणों से सवाल पूछते हैं, इसलिए मृत्यु को लगा। कभी कभी हम टाइम पास के लिए सवाल पूछते हैं, आज खाली हूं 1 घंटा बैठना है, पड़ो किसी के पास बैठ गया, पूछने शुरू कर दिया, सामने वाले को लगा चलो भाई कितना ख्याल रखता है, कितनी बातें पूछता है, पता चला कि वो तो किसी के इंतजार में टाइम, अच्छा अब मैं चलता हूं, जवाब तो सुन जाओ, नहीं फिर अगले बार सुन जाऊंगा। मृत्यु को भी लगा कहीं नचिकेता ऐसे मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा है, बोले थोड़ा ठीक से परख लो, सवाल तो बड़ा बड़ा पूछता है, जवाब दो और बीच में ही भाग जाए, बड़ा बोर लगता है, बड़ा बुरा लगता है कोई सवाल पूछ के जवाब ना सुने। तो तेरा टेस्ट करूं, अधिकारी और अनधिकारी ये योग्य है कि नहीं सवाल को जानने के लिए। और ये बड़ा प्राचीन प्रक्रिया रही जानने के लिए कि ज्ञान सबको देना नहीं चाहिए, ज्ञान जरूरी नहीं है, ज्ञान पाने का व्यक्ति कैसा है ये जरूरी है। रावण और वशिष्ठ दोनों ब्राह्मण थे, दोनों विद्वान थे वेद के, दोनों साधनाएं करते थे, दोनों तपस्याएं करते थे, दोनों ईश्वर को मानते थे, दोनों वेद आदि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, दोनों यज्ञ करते थे। फिर क्या हुआ आप रावण को गालियां देते हो और वशिष्ठ को पूछते हो? अधिकारी और योग्यता में फर्क है, वो उस ज्ञान को कैसे प्रयोग करता है और दूसरा उस ज्ञान को कैसे प्रयोग करता है। रावण को ज्ञान मिला, उसने यज्ञ किया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनूं, वीर मतलब सबको मार सकूं, मुझे कोई ना मार सके, इसीलिए यज्ञ किया, इसीलिए शास्त्र पढ़ा, शास्त्र को पढ़ा लोगों को तड़पाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। वशिष्ठ ने शास्त्र पढ़ा, यज्ञ पढ़ा अपने को तड़पाकर दूसरों की सेवा करने के लिए। इसीलिए तो ये जो पश्चिम के देश हैं, ये बात बात पर बैन लगा देते हैं, जो भी कहता है मैं एटम बम बनाऊंगा उससे पहले बैन लगा देते हैं। क्यों? बना ले एटम बम, हमें कोई नुकसान नहीं है, तो कब फोड़ देगा किस पर भाई, पहले तो ये साबित हो जाए कि एटम बम संभाल के रखेगा। इसीलिए इसकी टेक्नोलॉजी सबको नहीं दी जा सकती ना। आप कहेंगे ज्ञान देने में हर्ज क्या है, छुरी छुरी है, छुपा कर क्यों रखते हैं मां कि बच्चे के हाथ में ना लग जाए। अधिकारी नहीं है छुरी को पकड़ने का, कहीं भी घुसा सकता है, अपने में भी मां में भी, इसीलिए छुपा के रखते हो। हर ज्ञान हर एक के लिए नहीं होता। हिंदू धर्म में जो विकृतियां आई उसका भी मूल कारण यही रहा, शास्त्रों को उन लोगों ने यूज किया, प्रयोग किया जिनको शास्त्र पढ़ने का या बोलने का अधिकार नहीं था। कभी आपको मौका मिले वेद भाष्य पढ़ने का, हमारे यहां बहुत पुराने हुए एक महीधर उब्बट करके, बहुत पुराने यजुर्वेद के भाष्यकार हैं, कभी गलती से वो भाष्य आप पढ़ेंगे, आप जिंदगी में सोचेंगे नहीं कि मैं हिंदू हूं, इतना घिनौना, इतना जो मुंह में आप बोल नहीं सकते, कोई दुनिया का बिगड़ा हुआ इंसान भी ऐसे शब्द प्रयोग नहीं कर सकता जिस तरह के भाष्य है। जिन लोगों ने पढ़ा उन्होंने कहा ये वेद गडरियों के, दुष्टों के, पाखंडियों के शास्त्र है। उसी वेद में जब आप दयानंद के भाष्य पढ़ते आपको लगता है दुनिया भर का सारा सत्य ज्ञान इसी में छुपा पड़ा है। वेद तो वही है, फर्क क्या है? उस वेद को पढ़ने अर्थ करने की योग्यता किस में है? दिल्ली में जहां गुरुकुल में मैं पढ़ाता था, एक डॉक्टर साहब आए, वो पास में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वहां किसी प्रोफेसर है, वो किसी संस्था से जुड़े हुए थे, धार्मिक संस्था से। तो बोले कि मैं बच्चों को गीता पर लेक्चर दूंगा। ठीक है, उनके लिए एक घंटा निश्चित हुआ, वो गीता पर बोले, बच्चे सो गए ज्यादातर, सुने नहीं। तो उन्होंने शिकायत की कि बच्चे तो इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने गीता पर बोला। मैंने उनसे कहा कि अगर आप अपनी डॉक्टरी पर कुछ बोलते कि ये स्वास्थ्य क्या है, कैसे ध्यान रखना चाहिए, मोटा मोटी भी बता देते तो बच्चे जरूर सुनते, वो आपका विषय था। अब ऐसे चीज पर बोलने आए हो जिस विषय को यहाँ के बच्चे छठी क्लास में पढ़ते हैं, और आपने जो बोला वो सातवीं क्लास से ज्यादा हैवी नहीं था। यहाँ आचार्य के, शास्त्री के बच्चे हैं, वो आपको 12 साल तक गीता पढ़ा सकते हैं। जितना आपका ज्ञान है। आगे से आए मेडिकल साइंस पर जरूर बच्चों को बताइए, बच्चे सुनेंगे। शास्त्रों की बर्बादी इस कारण से ज्यादा होती है, जो लायक नहीं है वो उस पर बोलता है। हिंदुओं में यही गड़बड़ी हुई, नालायक लोग ज्यादा विद्वान माने जाते हैं हिंदुओं में। सिर्फ हिंदुओं में नहीं, जिस भी धर्म में, जिस भी देश में, उनकी बर्बादियां जल्दी होती है। इसलिए यमराज बड़े सतर्क था कि मैं कोई महान ज्ञान किसी गलत आदमी के हाथ में ना दूं, या तो समझ ना पाए, या मजाक उड़ा दे, या गलत इस्तेमाल करे। और हुआ भी, दुनिया में जितने महापुरुष हैं उन्होंने जो सिद्धांत स्थापित किया, उन सिद्धांतों का जो सत्यानाश किया उनके अनुयायियों ने, उनको जिस संस्था को स्थापित किया उस संस्था को चलाने वाले लोगों ने ज्यादा उस महापुरुष के सिद्धांतों को छेड़खानी की। वो गांधी का कांग्रेस हो, बुरा नहीं मानेंगे आप, हर बात पर बुरा मान जाते हैं थोड़ा, विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन हो, इन्होंने केस किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हम हिंदू नहीं हैं, हम रामकृष्णाइट्स हैं। ये कौन थे? उस स्वामी विवेकानंद के शिष्य जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, जो बोलता था हिंदू बोलने में गर्व महसूस करो। क्यों? क्योंकि अधिकारी नहीं है, जो उनका स्तर है, जो महापुरुषों का स्तर है, उस स्तर को जब अनुजाई छू नहीं पाता है तो अंगे अपने तरफ से उठपटांग अर्थ निकालता है, अलग अलग अनुजाई बनते हैं। वो ईसा मसीह हो, वो बुद्ध हो, वो महावीर हो, वो शंकर हो, दयानंद हो, विवेकानंद हो, दुनिया में लाखों करोड़ों महापुरुष हो, जिस विचार को लेकर चले उनके विचारों के अनुयायियों ने टुकड़ा टुकड़ा किया, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है दुनिया में ऐसा कोई विचार संप्रदाय व संस्था नहीं है जिसके पचासों टुकड़े ना हो। बुद्ध के बाद और आज तक बौद्ध धर्म में कम से कम 20-25 संप्रदाय बन चुके हैं। महावीर जैनियों में भी यही है, क्रिश्चियन में भी यही है, मोहम्मद में भी, इस्लाम में भी यही है, हिंदुओं में भी यही है, अपने आर्य समाज में भी यही है। क्यों? जो व्यक्ति जिस ज्ञान को प्राप्त किया और दूसरों तक पहुंचाया, वो दूसरा उसके लायक अगर नहीं है तो गड़बड़ी आएगी। इसीलिए सावधान होकर के ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अब लोकतंत्र आया तो हर चीज में लोग घुसे, साइंस में कम घुस पाते हैं इसलिए बच के रखा है, पर धर्म में कुछ ज्यादा ही घुस गए, इसीलिए धर्म का सत्यानाश ज्यादा हुआ। साइंस अब भी सुरक्षित है क्योंकि मुश्किल है, नहीं तो वो भी तब भी घुस जाते हैं तो ईरान, पाकिस्तान, ये क्यूबा जैसे देश बन जाते हैं, जो नॉर्थ कोरिया जैसे देश बन जाते हैं, कभी भी किसी देश को बर्बाद कर सकते हैं। ज्ञान का अधिकारी होना बड़ा जरूरी है। यमराज ने इसके अधिकारित्व टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए कुछ उसको बताया, बोले देखो ये बड़ा हेवी चीज है, भारी चीज है, तुम्हारे लायक नहीं, तुम और कुछ वर मांग दो। क्या बोला? देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहीं सुविज्ञेय मनुरेश धर्म अन्यं वरं नचिकेतो व्रणीष्व मामोपरो सिरितिमा सृजेनम। बोले देखो ये जो सवाल तुमने पूछा ना, ये कोई पहला सवाल नहीं है, हजार हजार लाखों सालों से देवता, ज्ञानी, ऋषि, मुनि इसी चीज के जवाब पाने के लिए तो साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, समुद्र के किनारे से हिमालय की चोटियों तक तपस्याओं में लगे रहते हैं इसी को जानने के लिए, और बहुत मुश्किल से बहुत कम लोगों को इसका जवाब मिला है। बहुत सूक्ष्म है ये, तुम ये सवाल मत पूछो तुम चाहो कोई दूसरा वर मेरे से मांग लो और मुझे वर के नाम पर फंसाओ मत, ब्लैकमेल मत करो, मैं ये जवाब, इस सवाल का जवाब देने लायक नहीं हूं, बड़ा कठिन और बड़ा सूक्ष्म उत्तर है, तुम और कुछ मांग लो। नचिकेता को थोड़ा डर आया। नचिकेता ने जवाब दिया, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाथ। अच्छा, देवताओं ने भी इस पर सवाल उठाया था, ऋषियों ने, मुनियों ने भी इस पर सवाल उठाया, फिर तुम कह रहे हो ये जो मैंने पूछा ये बड़ा मुश्किल चीज है, बड़ा आसानी से जाना नहीं जा सकता। वक्ता चास्य त्वाद्र कन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्यो एतस्य कश्चित्। फिर तुम कह रहे हो इसका जवाब देना भी तुम्हारे जैसे एक आधा लोगों को ही पता है। तुम मृत्यु, मौत, इस पर चर्चा हुई है, मौत ही है जो मृत्यु के इस तरफ और उस तरफ आत्मा को जान सकता है। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अलावा इसका जवाब कोई दे नहीं सकता, इसका मतलब तो मैंने सही जगह तीर मारा है और मैंने कोई छोटे मोटी चीज नहीं मांगा है, मतलब मैंने कोई अच्छा सा, पहले तो तुम ये नहीं बताते शायद मैं चेंज कर लेता, तुम जिस तरह मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो लगता है कुछ मैंने बड़ा ही मांग डाला है, फिर इससे छोटा मांगने का कोई सवाल नहीं उठता। फिर तुम कह रहे हो कि तुम ही इसके सही जवाब देने लायक हो, फिर मैंने सही जगह सही चीज मांगा, अब तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए, बताओ मरने के बाद होता क्या है। यमराज देखा, अच्छा बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पावरफुल है, फिर चलिए और थोड़ा ललचाते हैं, डर से नहीं डरा, ललचा कर देखते हैं कहीं लालच में आ जाए। बोला ऐसा करो, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीश्व बहून पशून हस्ती हिरण्यमश्वान भूमिर्महदायतनम वृणीश्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसी। एक काम करो, तुम और कुछ मांग लो, ऐसा मांगो कि सैकड़ों साल जीने लायक बच्चे पोते तुम्हारे हो, बहुत सारे पशु, हाथी घोड़ा गाय, आपको लगेगा ये हाथी घोड़ा गाय क्या काम का, आजकल आपके पास ये BMW और ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महल का जो कीमत है, उन दिनों यही कीमत था, जिसके पास गाय होती थी, घोड़े होते थे, हाथी होते थे, वो बड़े रईस माने जाते थे, धनी माने जाते थे। तो ये सारे मांगो, और भूमेर महद, ये जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा भी मांगो जहां तुम राज कर सकते हो, जमीन का टुकड़ा मतलब एक देश मांग डालो जहां तुम राज कर सकते हो, और ये कम पड़े ये भी मांग लो कि तुम कितने 100,000 साल जीना चाहते हो, मैं सब देने को तैयार हूं, बस ये मत मांगो कि मरने के बाद होता क्या है, ये जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, अगर तुम्हें ये कम लगता है, मैं तुम्हें और कुछ ऑफर करना चाहता हूं, एतत् तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीश्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वकामभाजं करोमि। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ये पसंद नहीं है, चलो तुम अपनी मर्जी से इससे बराबर, इससे ज्यादा कुछ मांग सकते हो तो मांगो। तुम मांगो कि मैं जिंदगी भर कभी गरीब ना रहूं, ऐसा भर भी दे सकता हूं, मतलब क्या होता है ना, राजा बन जाऊं, फिर 10 साल के बाद कोई दूसरा मुझे हरा दे, तुम परमानेंट राजा का वर ले लो, परमानेंट अमर, कुछ अमर पर तो मुश्किल है, बाकी और लंबे उम्र तक जीने का शब्द ले लो, बहुत बड़े जमीन पर तुम राज करो, जो इच्छाएं सब पूरी हो जाएगी, बस ये मत मांगो कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका उपदेश करो, ये मत मांगो। हम लोग अब तक छोड़ के भाग चुके होते हैं। क्या फर्क पड़ता है आत्मा परमात्मा में? देखा, नचिकेता के सकल से आंखों में कुछ रोशनी घटी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो इन चीजों से चौंधाया गया, तो यमराज ने थोड़े और लालच दिया, और थोड़ा इससे गंभीर लालच, ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, इस मर्त्य लोक में धरती पर जो भी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, ऐसी इच्छा तुम्हें लगे कि इस मर्त्य लोक पर पूरी नहीं हो सकती, ऐसी इच्छाएं भी मांग दो। सर्वान कामान छंदता प्रार्थयस्व, ऐसी इच्छाएं भी मांगो जो स्वर्ग में मिलता हो यहां नहीं मिलता हो। जैसे कुछ उदाहरण दिया, इमा रामा सरथा सतूर्या नहीं दृशा लंभनीया मनुष्य ही। सुंदर सुंदर अप्सराएं जो कभी बुद्धि नहीं होती हैं, रथों पर बैठी हुई होंगी, घोड़े हाथी चारों तरफ होंगे, इस सब में देने को तैयार हो, तुम्हारी दासियां बनेंगी। जो इस धरती में आम लोगों को ऐसी सुंदरियां नहीं मिलती है, और उनसे तुम अपनी सेवा करवाओ, ऐश करो, क्या रखा है ये आत्मा परमात्मा। वैसे ही बहुत सारे लोगों को ये बड़ा बिगड़ा हुआ चीज लगता है, तुम क्यों इस चक्कर में पड़ते हो, लो ये सब चीजें। पर सिर्फ हे नचिकेतो मरणम मानु प्रखीय, मौत के बारे में सवाल मत पूछो, ये जवाब देने लायक मैं नहीं हूं। नचिकेता ने ध्यान से सुना, वो समझदार था, शायद हमारे नजर से नासमझ हो, उसको लगा कि कुछ ज्यादा ही मैंने मांग दिया था अनजाने में। क्योंकि जब आप अपनी जमीन की किसी को बेचना चाहते हैं या बेचना नहीं चाहते हैं, कोई आपको कीमत पर कीमत बढ़ाने जाए, तो फिर आप सच समझ लेते हैं कि आप जमीन नहीं बेचनी है, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ ज्यादा कुछ मिलने वाला है। हर आदमी आता है $1,000 बढ़ा के चला जाता है, तो फिर आप 10 बार सोचते हैं कि मैं जमीन बेचूं ना बेचूं। नचिकेता को लगा कुछ मामला ज्यादा सीरियस है, जो मैंने मांगा इससे कुछ हेवी है। क्या जवाब दिया, समाप्त करता हूं, फिर अगले बार इसकी चर्चा करेंगे। शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैः तत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। बोले हे मृत्यु, ये जो तुमने मुझे लालच दिखाया, अच्छा है कि ये सब तुम अपने पास रखो। तुमने मुझे खुश करने के लिए नहीं दिया, मुझे मारने के लिए सब उपाय है। बोले क्यों, ये जो कुछ दे रहे हो इसको भोग करने से मेरा उम्र बढ़ेगा नहीं घटेगा। इतना सारा अगर भोगने लगू ये इंद्रियां जल्दी कमजोर पड़ जाएगी। तो 40 साल में मैं सूखी रोटी खानी पड़ेगी, बिना घी के, बिना छोंक के, बिना नमक के, बिना चीनी के, क्या करूंगा लेकर के। और सबसे बड़ी बात है, ये जिंदगी बड़ा कम है, और ये तुमने ही बना रखा है, उम्र बड़ा छोटा बना रखा है। ये जो कुछ देते हो इसको ज्यादा दिन भोग भी नहीं सकता, इसीलिए ये सब छोड़ो, ये अपने पास रखो। ये जो गाड़ियां तुमने, ये जो घोड़े हाथी सुंदरियां, जो कुछ देना चाहते हो अपने पास रखो, मुझे तो यही बता दो मृत्यु के बाद होता क्या है। अगली बार चर्चा करेंगे नचिकेता की और दृढ़ता, और यमराज उसको जवाब सचमुच देने लगते हैं। और मुझे लगता है आप लोग भी नचिकेता की तरह कुछ ज्यादा ही दिनों से ये पेशेंस दिखा रहे हैं कि ये बता ही नहीं रहे आगे, यही लटका रखते हैं। तो हो सकता है अगले बार हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओम शांति।